ओम शांति। हम सभी वर्तमान समय विशेष अटेंशन रखकर अपनी एक रस अचल अडोल स्थिति, निर्विघ्न स्थिति बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर हलचल में लाने वाली बातें तो अनेक आती हैं। हलचल के वातावरण में जबकि एक ओर विकारों का फुल फोर्स है, प्रकृति तमो प्रधान है, 63 जन्म किए हुए भी कर्मों का बोझ, अनेक प्रकार के हिसाब किताब जो आत्मा ने बनाए हैं, वो इस थोड़े से संगम के समय में सबको इन पेपर्स को पार करना है, संपूर्ण पावन बनना है। तो स्थिति को हलचल में लाने वाली अनेक बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, कोई न कोई विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डालता है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे आप अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाओ, कितनी भी बातें आएंगी वो पार हो जाएंगी, बातों की परवाह नहीं करो, आप शक्तिशाली बन जाओ, आप अपनी स्थिति उड़ती कला की बना लो, तो सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर से क्रॉस कर जाओगे। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरे इस पुरुषार्थ के मार्ग में कोई विघ्न आए नहीं है या आते ही नहीं है। हर एक के सामने कोई न कोई प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, प्राकृतिक किसी न किसी रूप का पेपर आता है, और सभी प्रकार के पेपर्स को सहज पार कर लिया जाए, हलचल न हो, उसमें अचल अडोल एक रस स्थिति रहे, खुशी खुशी से उस पेपर में पास हो जाए, उसके लिए समय प्रसमय बाबा अपने बच्चों को विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं। फाउंडेशन को मजबूत करो, जिनका फाउंडेशन मजबूत है, जितनी जोर से भी तूफान आ जाए, अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है, पक्का होता है, तो बड़े स्केल के भी भूकंप उसको हिला नहीं पाते, तूफान उसको कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है अपने फाउंडेशन को मजबूत करने की, चेक करने की। फाउंडेशन में जैसे आजकल भी कोई फाउंडेशन जब डालते हैं, और जितनी बड़ी मंजिल बनाना होता है उतना गहरा फाउंडेशन डालते हैं, जितना ऊपर ले जाएंगे उतना नीचे भी ले जाएंगे। तो हम सब बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं, हम सबको इसी एक जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करके मनुष्य से देवपद प्राप्त करना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए इस समय की स्थिति बहुत श्रेष्ठ और महान चाहिए। कोई बार बार हिलता है, टूटता है, फिर खड़ा होता है तो कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने, उस दिन से ही अगर किसी ने फाउंडेशन पर ध्यान दिया, आज की मुरली में बाबा ने कौन सा फाउंडेशन बताया, पवित्रता। ज्ञान का फाउंडेशन भी पवित्रता है, इस ब्राह्मण जीवन की नींव पवित्रता है। मुरली के अंदर भी था, स्लोगन भी था, ऊंच पद प्राप्त करना है, देव पद प्राप्त करना है, तो संगम पर इस पवित्रता की धारणा में मजबूत बनना है, ये फाउंडेशन है। अब इसके लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, परिस्थितियां आती हैं, परिवार डिस्टर्ब होते हैं और सारे झगड़े किसके लिए होते हैं, इसी के बात पर होते हैं। जो भी हमारे विद्यालय के आगे पेपर आए, विघ्न आए, वो एक ही कारण बना, पवित्रता। क्योंकि शुरू शुरू में ही जब स्थापना हुई और बहुत छोटी उम्र की बहनें, कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई ने शादी की, कोई की शादी होने वाली, सब यंग एज वाली कुमारियां विशेष यज्ञ में आ गई, ज्ञान सुनने लगी, साक्षात्कार होने लगे, निश्चय हो गया, संकल्प ले लिया कि मुझे पवित्र बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे शुद्ध आहारी बनना है, कोई भी नॉन वेज नहीं लेना है, टच नहीं करना है। बस शुरू हो गए घड़े में, हर घर में झगड़े। लोगों ने बाबा को कहा, बाबा ये क्या हो गया, आपका इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत, आपको लोग इतनी ऊंची नजर से देखते रहे हैं और इस एक बात के कारण इतनी समस्याएं आपके यज्ञ के ऊपर, आपकी इस संस्था पर आ रही हैं, आप केवल इसको ढीला कर दो, इस बात को छोड़ दो, बाकी आपका बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत अच्छा है, करो सब कुछ। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा, बच्चे ये बाबा तो खुद गृहस्थी है, इसने तो खुद सब अनुभव किए हैं, ये नहीं कहता है, कहने वाला जो है वो सतयुग की स्थापना के लिए हिमनली गॉड फादर स्वयं भगवान सतयुग की रचना कर रहा है, और सतयुग की रचना के लिए ये फाउंडेशन है, अगर इसमें लूज हो गया कोई तो सतयुग ही नहीं बनेगा, स्वर्ग ही नहीं बन सकता। और परमात्मा पतित पावन है, कहता है एक ही कार्य के लिए मैं इस सृष्टि पर आता हूं और कोई मेरा कार्य नहीं है, इस नर्क को स्वर्ग बनाना, इस पतित सृष्टि को पावन बनाना। अब इतना महान कार्य करने के लिए उसने न्यू में ही, फाउंडेशन में ही ब्रह्मचर्य व्रत, शुद्धान्न, दिव्य गुण, श्रेष्ठ संग, यही चार पिल्लर्स मजबूत कराए। इस ब्राह्मण जीवन में जो बाबा के बच्चे योग के अच्छे अनुभव करते हैं उसका आधार यही फाउंडेशन है, नहीं तो चलते हैं, मेरा योग नहीं लगता है, मैं बैठता हूं, मेरी बुद्धि भटकती है, कारण केवल चारों में से किसी एक फाउंडेशन की कमी है, इसलिए हिलता है फाउंडेशन, कोई भी बात आती है डगमग हो जाते हैं। अगर सहज योगी जीवन का किसी को अनुभव करना है, स्वतः योगी, निरंतर योगी, तो अपने इस फाउंडेशन को, इस चारों पिल्लर को चेक कर लो। अगर हमने दृढ़ता पूर्वक इस पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की पालना की है, कुछ भी हो जाए मुझे पवित्र जीवन जीनी है, मन वचन कर्म से शुद्ध पवित्र रहना है, पवित्र भोजन खाना है, बस शुद्ध अन्न ही खाना है, कहीं पर भी अन्न मेरे मन को दूषित न कर दे, और अपने जीवन में ही जो हम कहते हैं, जो हमारी कहनी है, वही हमारी करनी हो, हमारे में दिव्य गुण जीवन के अंदर दिखाई दें, और श्रेष्ठ संग हो, सत्संग करें। सत्संग कहते हैं एक परमात्मा का संग, सत गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है, उस सत्य के संग में ही रहें और कोई देहधारी का कोई भी गलत संग आत्मा को न लग जाए। जिन आत्माओं ने ज्ञान लेते ही इन चार नियमों को दृढ़ता से पालन किया है, उनके आगे कोई भी विघ्न नहीं आते। विघ्न वहीं आते हैं, समस्याएं वहीं आती हैं, स्थिति डगमग वहीं होती है जहां किसी न किसी बात में हम सब लूज हैं, अलबेले हैं, वहां विघ्न आना शुरू हो जाते हैं, फिर प्रश्न उठते हैं क्या करें, कैसे करें, ऐसे हुआ वैसे हुआ। बाबा कहता, बच्चे हलचल का कारण है, आपने जब बिल्डिंग खड़ी करना शुरू की, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया, तो इस फाउंडेशन को दृढ़ता के साथ मजबूत नहीं किया। अचल अडोल एक रस स्थिति के लिए आवश्यक है हम अपने कुछ बातों को दृढ़ता से पालन करें। इस समय वर्तमान समय के हिसाब से सबसे पहली आवश्यकता है संपूर्ण निश्चय की। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। विजयी बनने के लिए, कैसी भी परिस्थिति में पास होने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो, चेक करो। निश्चय में परसेंटेज नहीं होती है। पहले स्वयं में निश्चय कितना है, क्या सचमुच मुझे ये निश्चय है कि मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की थी, मैं विजयी माला का मणका हूं, विजयी रतन हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उस विजय का आधार है निश्चय। पहले स्वयं में संपूर्ण निश्चय कि बाबा ने मुझे कल्प पहले ऐसा श्रेष्ठ देवता बनाया था और मुझे ही बनना है और मैं बन करके दिखाऊंगा। पहला निश्चय ये चाहिए। और जो निश्चय बुद्धि है उसको हर पल मदद मिलती है, विजय होती जाती है, बातें आती हैं, उनको क्रॉस कर लेता है। दूसरा निश्चय है कि हमारा बाबा हमारे साथ सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है। उसका वायदा है, बच्चे मैं तुम्हें संपन्न बना करके, संपूर्ण बना करके अपने साथ ले जाऊंगा, बीच में खिसक नहीं सकता। इस समय वर्तमान समय जो एक फाउंडेशन हिल रहा है लोगों का, उसका एक मूल कारण दिखाई देता, इस निश्चय में कहीं ना कहीं डगमग हो रहे हैं। क्यों डगमग हुए? साकार ब्रह्मा बाबा जब गए, पहले मम्मा गई जो उनके मुरीद थे, जो मम्मा मम्मा कह करके ज्ञान में आए, मम्मा को ही सब समझा और कई बार अनुभव था। बाबा भी कई बार मुरली में कह देते थे मम्मा तो साथ अंत तक रहेंगी और मम्मा बीच में खिसक गई, शरीर छोड़ा, तो कई बच्चे बाबा के डगमग हो गए, हिल गए कि मम्मा चली गई, बाबा बैठा है, फिर भी मम्मा गई तो कई आत्माएं इस पत्ते झाड़ के जैसे गिरे हिले। फिर बाबा अव्यक्त हो गए। बाबा के अव्यक्त होते ही और हलचल, इतनी हलचल थी उस समय, मैं तो ज्ञान में था, मधुबन में नहीं था, परिवार में था। मुझे याद आता है जिस दिन पत्र मिला है, समाचार मेरे घर पर आया है, हम सब ऐसे ही ठंडी के दिन थे, गांव में आग के आगे ऐसे बैठे थे, कोयले की आग जला करके सब, और पत्र पढ़ते ही अरे पिताजी तो इतना डिस्टर्ब, ऐसा कैसे हो सकता है, झूठा पत्र है, बाबा कैसे जा सकता है, बाबा का तो वायदा है सबको साथ लेके जाएंगे। मुझे वो याद आता है सेन, मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, सामने बैठा था, पूरे घर में, सारे मोहल्ले में, जितने गांव में क्लास में आते थे सब के अंदर हलचल हो गई। अब मुरली कहाँ से मिलेगी, अब पालना कैसे होगी, संगम पूरा हो गया क्या, अभी क्या होगा, इतनी हलचल जो बात मत पूछो, हिल गए सब। तीन चार दिन ही हलचल चली और बाबा का पाठ नया खुल गया। अव्यक्त रूप में बाबा आए, सब बातों का उत्तर दिया, मुरली कैसे चलेगी, पढ़ाई कैसे होगी, कौन संभालेगा, क्या आगे होगा, सब बाबा ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा, आगे बढ़ते रहे, ब्राह्मण परिवार की वृद्धि होती रही, बाबा की अव्यक्त पालना मिली, इतना बड़ा विस्तार हुआ। वो तो आप सब देख रहे हो, जानते हो, जो नए हैं उनको शायद इतना न पता हो, पुरानों को तो मालूम है। बाबा के समय केवल भारत के अंदर, साकार के समय 108 केंद्र नहीं थे, बाबा कहते थे 108 केंद्र खुलेंगे। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो स्पीड बढ़ी, बाबा की अव्यक्त रूप में जो पालना शुरू हुई, देश विदेश 140 देशों में बाबा के बच्चे निकल आए, वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, सेवाएं बढ़ी और फिर धीरे धीरे इतना बड़ा विस्तार झाड़ का हुआ, बाबा ने भी अपने पार्ट को समेट लिया। परिवर्तन आया गया, पार्ट में परिवर्तन बहुत आया। हर 10-12 साल के बाद अव्यक्त बाबा के मिलन के पार्ट में भी अंतर देखा मैंने। लेकिन धीरे धीरे 30 दिसंबर 2017 को बाबा ने समाप्ति कह दिया। अब उसके बाद कितनी आत्माएं हलचल में आ गई, शायद श्री कृष्ण का जन्म हो गया होगा। चलो श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ तो ये अभी बच्चे जो आएंगे उनकी पालना कैसे होगी, अभी जो आएंगे उनको क्या होगा, अभी तो बहुत सारा काम रहा है, प्रत्यक्षता नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है। कई मनगढ़ंत बहनों ने बाबा की आवाज निकालना शुरू कर दिया, अव्यक्त बाबा का पाठ शुरू हो गया कई जगह। यहां बाबा आते, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और उसके कारण ऐसा हुआ, कई बाबा के बच्चे जिनका फाउंडेशन मजबूत नहीं था, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत नहीं था, वो भ्रमित हो गए। कोई बॉम्बे में बाबा आया तो कभी रायपुर में बाबा आया तो कभी कहीं बाबा आया। और कितने लोग टीचर सहित कई भटक गए जा करके, न इधर के रहे न उधर के रहे, मझधार में स्थिति क्या होगी, एक रस रहेगी। मन मत से पर मत से अपनी अलग संस्था चला दिया, कई जगह पर अलग बातें चलने लगी। और हमारे ही बाबा के बच्चे जिनका फाउंडेशन मजबूत नहीं था, वो सब जा करके, हमको तो निश्चय है, हमें तो यहां दिखाई देता, अनुभव होता है, बाबा आते हैं, मधुबन छोड़ के बाबा वहां आ रहे हैं। इतना बड़ा घर बनाया, इतना बड़ा परिवार बनाया, इतने बच्चों की रचना की। अगर बाबा को तीसरा रथ ही लेना था तो मधुबन वाला रथ नहीं कोई मिल सकता था। एक अल्पज्ञ आत्माएं अलग अलग बाबा का पाठ चलाए, संशय बुद्धि आत्माएं कहां से कहां भटक गई जाकर के, भटक रही हैं। कल ही मैंने एक भाई से बात किया, हमने तुम गया तुमको क्या लगा, कैसे बाबा दिखाई दिया, पता चला मुझे हो गया, 5-7-10 को लेके गया। कहता भाई जी मुझे तो निश्चय है बाबा आता है। क्या निश्चय है? जो बाबा ने मेरे से 15 साल पहले कहा था ना, वही शब्द बाबा ने वहां बोल दिए। अच्छा, इसी से निश्चय हो गया तुमको? कहां दादियों का त्याग, कहां रूहानियत, कहां तपस्या, कितना बल, उनकी दृष्टि देखो। कल दादी का बाबा के पाठ को देखा ना, क्या रूहात था, क्या रूहानियत थी, क्या उनकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही थी। बाबा के अव्यक्त पाठ का अनुभव किया ना कल, कैसे बाबा का अलौकिक पार्ट हम लोगों ने 48 साल इन आंखों से देखा। पूरी पूरी रात बाबा के सन्मुख बैठे, जो बाबा ने बोला वो सब कुछ लिखा, उनकी दिव्यता, उनकी अलौकिकता, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी पालना, उनके द्वारा निकले हुए ज्ञान रतन, जिनका हम सब ने बहुत सुंदर अनुभव किया। आज कोई आत्मा कहे कि नहीं यहां नहीं बाबा आते, यहां आते ऐसे होता ऐसे होता, तो क्या इसको निश्चय कहेंगे? इसलिए सब बाबा के बच्चों को अपने इस फाउंडेशन को चेक करना चाहिए। बाबा ने जो होमवर्क दिए हैं, जो हमें पढ़ाया है इतने वर्षों तक, कल की मुरली का ही होमवर्क अभी तक कहां हम कर पाए। 19 साल पहले की मुरली कल सुनी हमने, एक ही शब्द का उत्तर था, मेहनत नहीं चाहिए, मोहब्बत में रहो। बहुत ऊंचा लक्ष्य है, मुझे बाप समान बनना है। लेकिन बाप समान बनना है, उस ऊंचाई को पार करना है, तो एक नेचर नेचुरल बनाओ, बस एक नेचर। कौन सी? जैसे देहभान की नेचर नेचुरल हो गई है, उसको बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही देही अभिमानी बनने की नेचर को नेचुरल बना लो। इस नेचर को नेचुरल नहीं बना पाए और भटक गए इधर से उधर। यह नेचर हमारी नेचुरल बन जाए, और उसकी कितनी सरल युक्तियां बताई बाबा ने, ये करो इससे बन जाओगे, देहभान खत्म हो जाएगा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी तीन शब्दों का पुरुषार्थ कर लो, ये नेचर आपकी नेचुरल बन जाएगी। इतनी मीठी प्यार की शिक्षाएं मिली हैं, इतना अच्छा 48 साल सुप्रीम शिक्षक ने कोर्स कराया, पढ़ाया, फोर्स भरा, उसके बाद भी अभी आवश्यकता है पढ़ाने की। जिन आत्माओं ने डायरेक्ट पढ़ा है, सुना है, सिर्फ उनको स्वरूप में ले आए। बाबा तो किसी भी बच्चे के द्वारा अपने बच्चों की पालना कर सकता और कर रहा है। बाबा किसी एक तन में ही आएंगे क्या? लेकिन बाबा अपने बच्चों को अपने समान बना करके उनकी दृष्टि से, उनके बोल से, उनकी पालना से कितने लोगों की पालना कर रहे हैं। तो इस बात को संपूर्ण रीति से समझना और कहीं पर भी बुद्धि को हलचल में नहीं लाना, नहीं तो मझधार में आ जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। ये फाउंडेशन हिलने वाला है और बहुत जल्दी हिलेगा और हिलेगा, क्योंकि बाबा को तो वही आत्माएं चाहिए जो पक्के हैं, जो देवता घराने की पक्की मजबूत आत्माएं हैं, जिनको सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ऐसा बनना है, उनको सेलेक्ट कर रहा है, बाकी सबको छांट देगा, चले जाएंगे सब। इसलिए बाबा का ये जो निश्चय है, भगवान में जो निश्चय है, वो न अपने घर को छोड़ेगा, न अपने बच्चों को छोड़ेगा, अपने वायदे से नहीं बिमकोगा, अपने अव्यक्त वतन में रह करके बच्चों को सकास दे रहा है, पालना दे रहा है, अनुभव करा रहा है। दूर बैठी हुई आत्माएं उनकी सकास में चल रही हैं, उनके साथ का अनुभव कर रही हैं। इसलिए बहुत गुप्त रीति से बहुरूपी बाप अपना कार्य निराकारी वतन से, अव्यक्त वतन से डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसमें संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो करके जैसे बाबा का जो पाठ चलता है उसमें हिलना नहीं, इसमें अपनी स्थिति को अचल, अडोल, एक रस बनाना, कोई भी विघ्न के अधीन नहीं होना। नहीं तो ये विघ्न जब मन के अंदर आता है, प्रश्नों में जब बुद्धि उलझ जाती है, तो न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। ये जीवन इतनी श्रेष्ठ, इतनी महान, जो भगवान ने हमें पालना दी है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, वो एक सेकंड में कहां से कहां पहुंचा देगा। इसलिए देखना ये कहीं विपरीत बुद्धि बन करके बाबा का, बाबा के इस परिवार का, बाबा के इस ज्ञान का कहीं पर भी कोई इस पर कलंक न आ जाए। जो इतना सब हमको प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति का रिटर्न देने का ये समय है, पालना का रिटर्न देने का समय है। बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप उसकी उसी तरह से पालना नहीं देते जैसे बच्चे की किया, छोटेपन में किया। टीचर जब बच्चे को पढ़ा करके तैयार कर देते हैं, पेपर लायक बना देते हैं, तो उसके बाद वो पूछते नहीं तुमने क्या पढ़ा, कहते अब होमवर्क करो, पेपर दो, साक्षी हो जाते हैं, उस समय मदद नहीं करते। अब वो समय आ गया है कि पेपर के समय में वो साक्षी दृष्टा है कि मैंने 48 साल तुम बच्चों को अव्यक्त पालना दी है, 33 साल साकार पालना दी है, इतनी पालना लेने के बाद आप बच्चे उस पालना का स्वरूप बन करके आने वालों को पालना दो। उसकी बजाय यहां आता है वहां आता है, इस मनमत में और भूत विद्या में बच करके रहना, नहीं तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन टूटेगा। ऊपर से कहते हैं आसमान से गिरा, खजूर में लटका, और फिर उसकी क्या गति होगी। इसलिए सब बहुत समझ करके, बाबा के पक्के सच्चे बच्चे बन करके अपनी स्थिति को बिल्कुल अच्छा लाडोल एक रस बनाने के लिए स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, और कल्याणकारी ड्रामा में निश्चय है। ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट कल्याणकारी है। इस ड्रामा के अंदर कोई भी परिस्थिति पेपर आ रहा है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें अनुभवी बनाने के लिए आ रहा है। मुझे हलचल में नहीं आना है, नथिंग न्यू। इस पाठ को अच्छी तरह से, जैसे दादियों ने पक्का किया, ब्रह्मा बाबा ने पक्का किया, कैसी भी बातें आई यज्ञ के सामने, उन्होंने कभी ये नहीं कहा ऐसा क्या हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा, नथिंग न्यू, सब अच्छे से अच्छा होने वाला है, नई दुनिया का सवेरा आने वाला है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, हमें प्रश्नों में उलझना नहीं है। बहुत निश्चिंत स्थिति में वही रह सकते हैं जिनको ड्रामा की हर सीन में कल्याण दिखाई देता है, निश्चय है। और हमारा ये परिवार है, जिस परिवार के अंदर हम सब आए हैं, बाबा कहता है बच्चे 84 जन्म सतयुग से लेकर के भिन्न भिन्न संबंधों में इसी परिवार के साथ तो आप आए हैं, और जो भी मान लो कुछ नीचे ऊपर परिवार में किया है तो उसका ही फल इस अंतिम जन्म में सामने आता है। इसलिए कभी ये नहीं कहो ये परिवार में तो भाई बड़ी परीक्षाएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इज्जत देता है, कोई बेइज्जती कर देता है, कई लोग इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं भाई बाबा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन परिवार के साथ चलना बहुत मेहनत है। इसलिए देखना, ये परिवार के बिना कल्याण नहीं होने वाला है, रहना तो 84 जन्म इन्हीं के साथ है। इसलिए सहन करो, संभालो, परिवार की बात है भूल जाओ, एक दूसरे को क्षमा कर दो, क्षमा ले लो। स्थिति अच्छी बनानी तो यही करना पड़ेगा, अचल अडोल रहना है तो कोई बात को फील करके फीलिंग के फ्लू में नहीं आना। छोटी छोटी बातें ऐसे फील कर लेते हैं, इसने मुझे ऐसे कर दिया। क्लास में आते हैं, सेवा करते हैं, कुछ धन से सहयोग देते हैं, मान लो कोई प्यार से मुस्कुरा करके निमित बहन बात नहीं करती, या उसको सीट नहीं मिलती, कोई सेवा नहीं मिलती, कोई पूछता नहीं, उसका मूड खराब हो जाता, फीलिंग आ जाती। ज्ञान एक तरफ, योग एक तरफ, परिवार एक तरफ, यहाँ तो मेरी इज्जत ही नहीं, यहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं, यहाँ तो मुझे कोई पूछता नहीं, यहाँ तो कोई देखो उसको सीट मिली, उसको सीट मिली, मुझे तो कोई सीट भी नहीं देता। ये सब पेपर हैं, ये हिलाने वाले हैं, और यही हिला रहे हैं इस समय। इसलिए ध्यान देना, कुछ भी हो मुझे क्या चाहिए, बाबा ने हम सबको इतना श्रेष्ठ आसन दिया है, सुमान का कितना बड़ा आसन कल बाबा ने दे दिया, क्या हो आप बच्चे, बाबा के भी सिर के ताज हो, कहता बाबा से भी ऊंचे हो, बाबा अपने समान नहीं बनाना चाहता है, तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाना चाहता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे मेरे सिर के ताज हो, ताज तो सिर से ऊंचा होता है, कितना ऊंचा सम्मान दिया। अब एक देहधारी आत्मा मुझे अगर नहीं पूछ रही है, सम्मान नहीं दे पाई, कोई कारण हो सकता है, कोई बात हो सकती है, और हम उस बात को लेकर के अपने आप को मूड खराब कर ले, डिस्टर्ब हो जाए, अपसेट हो जाए, मुरली से प्यार खत्म हो जाए, योग से प्यार खत्म हो जाए, पढ़ाई छूट जाए, तो क्या है, यही स्थिति बनाई, अचल अडोल एक रस स्थिति, इसी को कहेंगे क्या। अपने आप से पूछो क्या चाहिए मुझे, बाबा ने मुझे इतना सब दिया है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना दिया, बाबा ने कहा जितने भगवान के टाइटल हैं मैं तुम सबको उसका मास्टर बना देता हूं, जितना तुमने मुझे कहा है ये हो ये हो ये हो, तुम मेरे बच्चे मेरे मास्टर हो, इतना बड़ा सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, अपने से भी ऊंचा बिठाया, आगे बढ़ाया, फिर भी एक हद का मान, हद का आसान, हद का नाम, उसके पीछे अगर जाओगे तो ये फाउंडेशन कभी भी नीचे ऊपर रेत का फाउंडेशन हो गया, फिर तो कभी भी हिलेगा डुलेगा गिरेगा। इसलिए अगर फाउंडेशन को मजबूत करना है तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करो। ज्ञान और योग के लिए हम आए हैं, हम दूसरे कार्य के लिए नहीं आए हैं बाबा के घर में, मुझे केवल पढ़ाई पर अपना अटेंशन देना है और योग से। आज बाबा ने दो लाभ बताए, अगर बच्चे बाबा को प्यार से याद करोगे तो एक तो आगे कोई भी कर्म नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, और दूसरा जो पास्ट में हो गए हैं वो विकर्म विनाश हो जाए। ध्यान जाता है ना मुरली के ऊपर, कितना बाबा अंडरलाइन करके बताता है। अब हम सब बाबा के बच्चे इस फाउंडेशन को मजबूत करें कि हम तो अपनी उन्नति के लिए बाबा के बच्चे बने हैं। हम कोई चीजों के लिए, मान शान के लिए, नाम के लिए, इसके लिए हमने बाबा को जीवन नहीं दी, हम उसके लिए नहीं बने हैं। हमको बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, एक ऊंचा आसन दे दिया है। मुझे तो एक दृश्य रामायण का बड़ा अच्छा लगता है, देखा होगा आप लोग जानते हैं। जब अंगद रावण के दरबार में जाता है तो बहुत अच्छी सीन बनाई है कि जब वो गया है तो उसको दूत की तरह से सम्मान नहीं दिया उसने, रावण ने। और पहले तो उसको कहा, रे तेरे बाप को तो राम ने मार दिया, छल से मार दिया, तुम उसमें क्यों मिले हो, उस सेना में क्यों, तो मेरे पास आ जाओ। पहले तो उसको बहुत कोशिश करके अपने मिलाना चाहा, लेकिन देखा है नहीं झुकता है, तो उसको आसन नहीं दिया बैठने के लिए। उसने आसन मांगा नहीं, क्या किया, अपनी ही पूछ निकाली और उसको घुमाता गया घुमाता गया। जब रावण से भी बड़ा उसका आसन बन गया तो उसके ऊपर बैठा। आपको ऐसा पूछ का आसन होता है क्या? ये सम्मान का आसन है। कलयुग में रावण संप्रदाय वाले सम्मान दें या न दें, पूछें या न पूछें, सीट पर बिठाएं या न बिठाएं, हमारे पास तो बाबा ने इतना बड़ा आसन दिया, पूछ बहुत बड़ी है, देवमान वाली नहीं, उसको तो आग लगा दो, उसे तो लंका जलेगी। लेकिन जो हमें सम्मान दिए हैं उसका आसन बनाओ, और फिर रावण को चैलेंज करो कि अगर तुम मेरे पांव को भी हिला के दिखा दो, तुम क्या, तुम्हारी सेना का कोई भी दिखा देगा तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। सोचने की बात है, सोचने की बात है। सीता पर अंगद का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन निश्चय कैसा था कि सीता तो कभी राम के सिवाय कोई तो हो ही नहीं सकती, इसलिए उसने पांव जमा दिया। और कहते जब सब उसके बड़े बड़े योद्धा उसको हिला करके हार गए, थक गए, कोई नहीं हिला पाया, तो रावण खुद गुस्से में आके उठाने लगा और उसने पांव नीचे पीछे कर लिया, नहीं तुम मेरे पांव के आगे मत झुक, तुम राम के आगे झुक जा, बस सब ठीक हो जाएगा। आप समझ सकते हो कितना आध्यात्मिक रहस्य है, और कैसे बाबा अपने बच्चों को संगम पर ऐसा बनाना चाहते कि बच्चे ऐसे अंगद के समान अचल अडोल एक रस बन करके दिखाओ, कुछ भी हो जाए, कैसी भी बातें आ जाएं, आपकी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए, स्थिति सदा एक रस रहे। जिसने बाबा के साथ सब संबंधों का रस लिया है उसकी स्थिति कभी डगमग नहीं होती। और जहां पर ये मुझे प्यार दे, ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे ये दे, मुझे वो दे, जहां पर लेने की भावना आ गई वहां पर सम्मान खत्म हो गया, अभिमान आ गया। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को दाता बनाया है, मंगता नहीं बनाया। कोई भी बाबा का बच्चा अगर भगवान के आगे भी मांगेगा तो भी भगवान को बड़ी रहम की दृष्टि से देखना पड़ता है, ये मांग रहा है, ये मेरा बच्चा। आज कोई लौकिक में भी बाप के आगे बच्चा हाथ फैलाए कोई चीज मांगने के लिए जाए तो बाप को भी रहम आएगा, तरस आएगा, ये क्यों मांग रहा है, इसको क्या है, ये तो अधिकारी है, तो मालिक है। लेकिन अगर किसी दूसरे के पास चला गया मांगने के लिए तो दूसरा ये सोचेगा शायद इसका संबंध बाप से नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, तब तो हमारे पास आया है। हम सभी भी अगर कुछ मांग रहे हैं, माना हमारा संबंध कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, इसलिए स्थिति नीचे ऊपर हो रही है, इसलिए एक रस नहीं बन रही है। अगर सब रस सब प्राप्तियां एक बाबा से हमने की है, न कन रस है, न मुख रस है, न आंख रस है, न हाथ रस है, कोई रस खींचता नहीं है, एक बाबा का प्यार, एक बाबा का सम्मान, एक बाबा के द्वारा हमने सब कुछ पाया है, तो क्या है, कोई आत्मा कितनी भी धनवान हो, कितनी भी गुणवान हो, कितनी भी रूपवान हो, कितनी भी स्नेही और सहयोगी हो, मुझे क्या देगी। जहां पर किसी आत्मा की तरफ हम आकर्षित हो गए ये बहुत अच्छा है, बाबा कहता वहां दाल में काला है, कुछ न कुछ आप उसकी तरफ आकर्षित हैं, प्रभावित हैं। और किसी देहधारी का प्रभाव अगर आपकी बुद्धि पर पड़ गया, स्थिति डगमग होगी। आज तो बड़ी खुशी हो रही है, कल कोई कुछ कह देगा तो बस उसी समय अपसेट हो जाओगे, इसलिए ध्यान देना। न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, कितने भी अच्छे हैं, सबको बाबा ने अच्छा बनाया, गुणवान बनाया, सब विशेषताएं भरी हैं, स्नेही सहयोगी बनाया है, ये भगवान की दया है उसके ऊपर, ठीक है। वो सहयोगी बने, बाबा का बच्चा बने, अपना सफल करे, हमारी शुभ भावनाएं हैं, मुझे पर्सनल उसे कुछ नहीं चाहिए। करेगा तो पाएगा, किसी की विशेषता की तरफ जरा भी आकर्षण न हो। बाबा ने इसको विशेषताएं दी हैं, ये अपना भाग्य बना रहा है, विशेषताएं उसकी हम देखें, अपने आप को विशेष बनाएं, लेकिन विशेषताओं के आगे झुके नहीं, प्रभावित न हो जाएं, नहीं तो वहां लगाव झुकाव शुरू हो जाएगा, स्थिति डगमग हो जाएगी, इस सहज मार्ग से सहन वाला मार्ग अनुभव होने लगेगा। इसलिए सब अंडरलाइन करना, अगर एक रस निर्विघ्न स्थिति बनानी है तो कोई कैसा भी हो उसे विरोध नहीं करना, उसके प्रति नफरत नहीं, उसके प्रति घृणा नहीं, यह ही ऐसा, ये तो रोज रोज कुछ बोलता है, उल्टा करता है, श्रीमत पर नहीं चलता, ये मनमत पर चलता है, जो करेगा वो पाएगा, मैं क्यों उसके कारण अपनी स्थिति खराब करूं। कई बार ऐसी स्थिति डगमग होती है लोगों की, हमने इसको इतना अच्छा ज्ञान दिया, कोर्स कराया, इतना सिखाया समझाया, फिर भी ये ऐसा कर रहा है, मेरा मूड खराब कर वो रहा है, मूड मैं अपना खराब करूं, और या उसके प्रति नफरत कर लूं, घृणा कर लूं, उसे वैर रख लूं। बाबा कहता है ये दोनों चीजें योग में बहुत रुकावट डालती हैं, स्थिति को एक रस रहने नहीं देती, या तो आप किसी के तरफ प्रभावित हो रहे हैं और या तो एक किसी से आप नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, इसलिए कोई कैसे भी है मुझे किसी को भी देख करके अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करना, तब कहेंगे ये स्थिति इसकी एक रस है, कैसी भी बातें आई, कैसी भी परिस्थितियां आई, कैसे भी व्यक्ति सामने आए, कोई इज्जत देने वाला है, मान देने वाला है, सम्मान देने वाला है, और कोई निंदा करने वाला भी है, लेकिन बाबा हमेशा कहता है बच्चे निंदक नियरे राखिए, कोई निंदा करता है तो उसे दूर नहीं जाओ, उसको नजदीक रखो, क्यों, क्योंकि वो आपका अटेंशन खिंचवा रहा है। एक बार बहुत अच्छा लेख आया था जगदीश भाई का, सुना होगा पढ़ा होगा पुराणों ने, भगवान तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूंगा, बहुत अच्छा रमणीक लेख था। जो आजकल दोस्त बने हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारी कमियों को छिपा रहे हैं, हमारे महिमा कर रहे हैं, कहते हैं मक्खन लगाते हैं, और जो थोड़ा ऐसे हैं वो हमारी बात देखते हैं, वो फट से इधर सुनाते हैं उधर सुनाते हैं, हमारी कमियों पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, तो मित्र कौन हुए? मित्र तो सच्चे हो गए जो हमारी कमियों पर तो कम से कम ध्यान खिंचवा रहे हैं, हमारा अटेंशन तो जा रहा है, हमारा पुरुषार्थ तो अच्छा हो रहा है, हम उनके कारण कोई गलत बोल नहीं रहे हैं, हम उनके कारण संभल के चल रहे हैं। बाबा ने उनको कभी भी नहीं कहा शत्रु हैं। एक बार बाबा के लिए कुछ बहुत उल्टा अखबारों में लिख दिया किसी ने, बहुत उल्टा लिख दिया, कलकत्ता के अंदर अखबारों में लिख दिया कि बाबा इनका जो था ब्रह्मा बाबा के लिए लिखा, ये सिलाई का काम करता था, साइकिल का काम करता था, कहां हीरे जवाहरात का बिजनेस करने वाला, और अखबारों में ऐसा उल्टा सीधा लिख करके लिखा दिया। और दादी निर्मल शांता बाबा की बेटी को बड़ा आया कि मैं तो इसके ऊपर मान हानि का केस कर दूं, लेकिन बिना बाबा के पूछे तो कुछ कर नहीं सकती थी, तो बाबा को लिखा, बाबा ऐसे ऐसे इसने अखबार में लिखा है, मुझे तो आता है इसके ऊपर मान हानि का केस कर दो। बाबा बहुत प्यार से लिखता, बच्ची उस अखबार का नाम था विश्वामित्र, बाबा ने कहा बच्ची उसको लिखो, तुम तो विश्व के मित्र, हमारे मित्र हो, हमारे बाबा के मित्र हो, उसके ऊपर केस क्या करना, वो तो अबोध बच्चा, अनजान बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं है, इसलिए उसको लिखो तुम हमारे सच्चे मित्र हो। और बहुत प्यार से बाबा ने पत्र का जवाब उसको पत्र लिखवाया, अखबार वाला झुक गया, कहता है सच्चे, जो सच्चे होते हैं वो कभी गर्म नहीं होते, सच्चा हीरा कभी गर्म नहीं होता, एक बार कहते हैं एक अंधे के सामने एक बहुत बड़ा मिलावटी हीरा सच्चे हीरे के साथ मिला के रख दिया गया। दूसरे लोगों को कहा गया परखो तो जो नकली था वो तो बहुत अच्छा था, लोग परख ही नहीं पा रहे थे इसमें नकली कौन है असली कौन है। लेकिन एक अंधे ने कहा मैं बता सकता हूं कौन सा गर्म है कौन सा अच्छा है कौन सा नकली है। बोला ये कैसे बताएगा, तो लाओ मेरे आगे। थाली लाए, थाली में नकली और असली मिला के रख दिए। थोड़ी देर उसने धूप में रखा, जो असली थे वो तो ठंडे थे और जो नकली थे वो गर्म हो गए थे। उसने फटाफट आंख बंद किए हुए अलग अलग कर दिए नकली है असली है। तो सबने पूछा अरे तुमको कैसे पता ये नकली है असली है। बोला जो असली है वो ठंडा है और जो नकली है वो गर्म हो रहा है। ये पारखी था, इसको परख लिया उसने। यहां पर भी छोटी छोटी बातों में अगर कोई गर्मी करता है कुछ दिखावा करता है अहंकार में आ जाता है वो असली है क्या सत्य है क्या। कहते मैं तो सच्चा हूं ना इसलिए मुझे तो जोश आता है, मैं सहन नहीं कर सकता हूं कोई गलत करता है कोई उल्टा करेगा मैं बोलूंगा जरूर क्योंकि मैं सत्य हूं। बाबा कहता तुम सच्चा, तुम ही सच्चा नहीं है। जहां सच्चाई है वहां सभ्यता है, वहां रॉयल्टी है। वो कभी भी जोश में नहीं आता, झूठे लोग ही जोश में आते। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अपनी स्थिति को अगर अचल अडोल एक रस बनाना चाहते हैं तो सत्यता का फाउंडेशन मजबूत करो, पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो, ऊंचे चरित्र का फाउंडेशन बना करके रखो, ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का करके रखो। कोई भी विघ्न कोई भी परिस्थिति कहां से भी माया आपको डगमग नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती, एकदम अचल अडोल एक रस स्थिति बन जाएगी। और उसकी बहुत सारी निशानियां दिखाई देंगी क्योंकि ज्ञान मार्ग में जितना हम आगे बढ़ते हैं जितना आप और आगे बढ़ेंगे कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, कहते हैं देखो ऐसा है यहां भी ऐसे होता वहां भी ऐसे होता। बहुत सारी वैरायटी बातें आपको सुना करके आपके मन को इतना भ्रमित कर देंगे। आजकल का जो संघ है ना, एक बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते हैं ब्राह्मणों का, संघ तारे कुसंग डुबोए। कई बार हम जो हमारे साथी हैं उनको पहचान नहीं पाते। अगर कहीं पर भी कोई अपने बड़ों के बारे में अपने इस मधुबन यज्ञ के बारे में बाबा के महावाक्यों के बारे में या बाबा के किसी भी बात के बारे में आपको अगर कोई भ्रमित करे उल्टी बात सुनाए आप उसे सावधान हो जाना, क्योंकि कहीं न कहीं से वो आपको परचिंतन करके परदर्शन करके भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। वह आपको दूरी कर रहा है, आपको दूर कर रहा है, परिवार से दूर कर रहा है, यज्ञ से दूर कर रहा है, पढ़ाई से दूर कर रहा है। उस जैसा दुश्मन तो कोई नहीं है, लेकिन वो समझते हैं वो तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, कम से कम बताया तो हम सावधान हो जाएंगे। बाबा कहता है एक स्लोगन पक्का कर लो, रोज लिखो रोज याद करो, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर कहीं पर भी कोई पर चिंतन माना दूसरे का चिंतन, पर दूसरा व्यक्ति का चिंतन हो या कोई बात का चिंतन हो, अगर वो चिंतन आपको कर रहा है माना वो पर चिंतन आपका पतन करने वाला है, नीचे ही रहेगा, आपकी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में जिनको अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनानी है वो संग की बहुत संभाल करना। संग साहित्य कई चीजों पर बहुत असर डालता है, जिस तरह का अध्ययन है श्रव्य और दृश्य मन को दूषित करते हैं। कहीं न कहीं कोई चीज आंखों के द्वारा देख ली कानों के द्वारा सुन ली वो मन के ऊपर अपना प्रभाव डाल के चली गई और उसी प्रकार संकल्प चलने लगे, उसी प्रकार स्वप्न आने लगे और संकल्प और स्वप्नों के आधार से जो संकल्प बीज है उसके आधार से वाणी आई और वाणी के बाद फिर कर्म होने लगे। इसलिए अटेंशन देने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज जो कलयुग के अंदर हरेक के आगे पिरोसी जा रही है, चाहे वो अश्लीलता है, चाहे वो व्यसन बुराइयां हैं। आज आप अगर इंटरनेट के शौकीन हैं, YouTube बहुत अच्छा देख रहे हैं, चला रहे हैं, अगर आपकी बटन कहीं गलत रास्ते पर चली गई तो आपके मन को खराब कर देगी, दूषित कर देगी, आपको सही मार्ग से वंचित कर देगी। आप जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी बजाय आप भ्रमित हो जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए जो समझते हो बहुत जरूरी है, हमारी स्वोन्नति में, हमारे पुरुषार्थ में ये बहुत अच्छा साधन बना हुआ है, यूज करो, आपको आगे बढ़ा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जहां पर आपके मन में, संकल्पों में कोई भी व्यर्थ की उत्पत्ति हो, क्वेश्चन मार्क उत्पन्न हो जाए, उसको फुल स्टॉप करो, उसको नहीं देखना है, वो न देखना है, न सुनना है, न सोचना है, न किसी के आगे उसका वर्णन करना है। अगर कोई को अपनी स्थिति एक रस बनानी है, अचल अडोल बनानी है, तो ऐसी व्यर्थ बातों को अलाउ नहीं करो, अंदर ही नहीं जाने दो। बाबा ने इसके लिए कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, लेकिन साथ साथ थिंक नो इविल और डू नो इविल, सोचना भी नहीं इसके विषय में। इसलिए अगर आप सब परहेज से चलो, बहुत अच्छी परहेज, बाबा ने हट नहीं सिखाया लेकिन संयम जरूर सिखाया है। तीन चीजों की बहुत अच्छी परख चाहिए, एक स्वयं को परखना, कई लोग स्वयं को ही नहीं परख पाते मैं क्या हूं, अलबेलेपन में मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ठीक है पुरुषार्थ, मैं जो कह रहा हूं अच्छा है, जो कर रहा हूं वो भी अच्छा है, लेकिन क्या जैसा बनाना चाहता है वैसा बना हूं, वैसा बन रहा हूं कितनी परसेंटेज में बना हूं, वो दिव्यता, वो रूहानियत, वो अलौकिकता, वो सरलता, वो मधुरता हमारे जीवन में आई है। अगर नहीं आई है तो क्या कमी है, चेक करो। जैसा बाबा मुझे बनाना चाहता है ऐसा मैं बना हूं, तो पहले स्वयं पर पूरा ध्यान दे करके स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। ऐसे विश्व बदल जाएगा ऐसा कहने वाली बात नहीं है ये, जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो मैंने बाबा का बनने के बाद स्वयं में कहां तक परिवर्तन लाया है, स्वयं को चेक करो। और स्वयं को परिवर्तन करने के लिए मैं ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का संयम पूर्वक पालन कितना करता हूं। संयम का अर्थ है परहेज, नियम पर परहेज से चलने वाले। जैसे हमारा नियम है अमृत वेले उठना, उठ गए, लेकिन क्या संयम पूर्वक, परहेज पूर्वक, जैसे बाबा ने बताया है, हाथ मुंह साफ करके, अलग से स्थान पर बैठ करके, बाबा से बहुत दिल से प्यार से बातें करो, रूढ़ियां करो, ये संयम पालन करो। नियम तो अपना रहे हो लेकिन परहेज से करो। तो संयम, स्वयं, संयम, और तीसरा है समय। ये संगम का समय ऐसे ही व्यर्थ में बीत न जाए, तेरे मेरे में न चला जाए, अलबेलेपन और आलस्य में न चला जाए, इस पर बहुत अटेंशन देना। नहीं तो बाबा कई बार कहता है वर्तमान समय माया चलते चलते बच्चों को अलबेला बना रही है, अलबेलेपन से प्रवेश होती, कौन बना है, आठ ही तो बनने वाले हैं, हम कहां बनेंगे, इतने पुराने पुराने हैं, ऐसे ऐसे सोच सोच करके बाबा इसको पता क्या कहते हैं, रमणीक शब्द देते हैं, बच्चों ने एक नरम डल्लप का तकिया लगा के आराम से सो जाते, ये अलबेलेपन की नींद है। बाबा कहते हैं बच्चे चेयर रेस चल रही है, कोई लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है, कोई बैठा नहीं अभी कुर्सी पर, दौड़ रहे हैं सभी, आप रेस करके देखो। अपना समय, संकल्प, श्वास, संपत्ति, जो खजाने हैं सब सफल करो, सेवा में लगा दो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। हो सकता है कोई आगे पीछे वाला 10 साल 15 साल वाला कहीं अलबेला हो गया हो, आप उससे आगे आ जाओगे, लास्ट आते भी फास्ट जा सकते हो, नंबर आगे ले सकते हो। इसलिए मैं बन नहीं सकता हूं, मैं कैसे बनूंगा, इस प्रकार के अलबेलेपन के संकल्प कभी भी उत्पन्न न हो, इस पर ध्यान देना। और आलस्य को जीत लो। आलस्य ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु है। बैठे हैं क्लास में, देखो ऐसे बैठे हैं गर्दन नीचे करके, कहीं यहां भी बैठे हैं अभी, इतना ज्ञान डांस हो रहा है, मुरली चल रही है, योग अच्छा हो रहा है, और बेचारे का जरा भी अपनी उन्नति के लिए ध्यान नहीं है, आते ही गर्दन नीचे हो जाते, क्या है आलस्य। इतनी अच्छी कमाई से लोग वंचित हो जाते हैं। बहुत अटेंशन देना इस बात पर कि आलस्य महाशत्रु है, हमें कमाई से वंचित कर देता है। एक ढक से अच्छे संकल्प करने लगो, नशे के संकल्प, खुशी के संकल्प, उमंग के संकल्प, नींद पता नहीं कहां भाग जाएगी, भले रात भर नींद न किया हो। अटेंशन देंगे तो आलस्य को जीत सकेंगे। और फिर बहाना, ऐसा तीसरी बात, बहानेबाजी, क्या करूं आज मुझे ये हो गया, आज मुझे ये हो गया, इसके कारण मैं क्लास में नहीं आ पाया, योग नहीं किया, आज अमृत बेला मिस हो गया, सेवाएं मिस हो गई, बहाने बहुत हैं। इसलिए ध्यान देना, हम सब बाबा के बच्चों को इस संगम समय पर कैसी भी परिस्थितियां कम होने वाली नहीं है, ध्यान देना, ये तो बढ़ेंगी ही, कलयुग अंत है और अंतिम समय में माया अंतिम वार साधारण रीति से नहीं करेगी। कोई भी हारने वाला जब होता है और लास्ट में समझता है कि एक बार तो मैं जोर से मार करके जीत जाऊं, वार होगा उसका, जोर से वार होगा, उसको जाने का समय, उसके विदाई का समय है, इसलिए लास्ट अजमाएगी वार को। और आप बच्चे बाबा के अच्छा लड़ो, लेक रस कुछ भी हो, ऐसी खुशनुमा एक रस स्थिति बना लो, पार कर जाओगे सहज। सबसे बड़ा गुण है धैर्यता का, कोई बात आती है ना, तुरंत नहीं, जोश में नहीं आना, उतावले नहीं होना, बातें आई हैं, पेपर आया, पार हो जाएगा। जहां धैर्यता है, जहां मधुरता है, जहां सरलता है, गंभीरता है, वहां पर हमारी मार्क्स जमा हो जाती है, बिना पुरुषार्थ के मार्क्स जमा हो जाती है। और जहां उतावलापन आ गया, जहां पर कटु वचन निकल गया, जहां जोश में आ गए, वहां पर की कमाई एक सेकंड में नष्ट हो जाती है। इसलिए हम अपनी ऊंची स्थिति बनाने पर ध्यान दें, अचल अडोल एक स्थिति बनाएं, विघ्नों की परवाह नहीं करो, नॉलेज फुल बन करके रहो कि सब बातें आई हैं, आई थी, हमने पार की थी और हमें पार होना है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, उसके साथ हमारे सब संबंध है। इसलिए बहुत दिल से बाबा शब्द को यूज करो, दिल से बाबा कहो और आपकी परिस्थितियां बाबा के साथ से ऐसे समाप्त हो जाए, आप उनको पार कर सको। तो हम सब बाबा के बच्चों को अभी वर्तमान समय अटेंशन दे करके हलचल में नहीं आना है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी बड़े से बड़ी बातें आ जाएं, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, हम इसको पार करके आए हैं, पार करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए तपस्या की है 3 दिन, और अच्छे संकल्प करके अपने आप को बिल्कुल भरपूर करके जाना। ओके, कोई प्रश्न हो तो पूछो, टाइम हुआ है। ओम शांति। कुछ पूछना है किसी को?
ओम शांति भाई जी, मैंने काफी क्लासेस और या उसमें कहीं ना कहीं मूल्यों में भी पढ़ा है, जैसे 4 प्रकार की याद होती है, हमारी याद की वैरायटी होनी चाहिए, बराबर। तो क्योंकि एक ही याद में हम मन जो है एक उब जाता है, तो 4 प्रकार की बातें हैं, मैं बता रहा, अगर उसमें कुछ कमी या कुछ है तो उसे आगे कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो बताना। मुझे सिर्फ ये 4 बातों का स्पष्टीकरण चाहिए। जैसे 4 प्रकार की याद मैंने सुना है, एक होता है कि हम मनन चिंतन करते हैं ज्ञान का, वो एक याद हो गया। दूसरा होता है बाबा से जो रोज ज्ञान होता है। तीसरे प्रकार की याद होती है जो हम देह से न्यारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं। चौथा होता है बीज, बराबर, बिंदी। तो जरा पहला और दूसरा तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बिंदी और फरिश्ता में आप क्या विचार करते हो, क्या अनुभव करते हो, ये मुझे थोड़ा स्पष्ट जाना। अगर ये 4 पॉइंट के अलावा भी कोई याद है तो बताइएगा मुझे।
कल भी बाबा ने अभ्यास एक बताया था, ड्रिल जो कराई थी बाबा ने, याद हुआ होगा कि बच्चे एक बाबा है फरिश्ता और एक बाबा है निराकार। निराकार शिव बाबा को हम याद करते हैं तो निराकार स्टेज में पहुंचते हैं, और जब ब्रह्मा बाबा को सामने लाते हैं तो फरिश्ता स्टेज आती है, क्योंकि वो फरिश्तों की दुनिया में है अभी। तो साकार में ज्ञान का मनन करना, चिंतन करना, रूह ध्यान करना बाबा से, ये तो हम चलते फिरते कर्म करते कर्म योगी बन करके करते ही हैं। लेकिन कर्म करते बाबा कहता है जो बच्चे बहुत शुद्ध और पवित्र संकल्पों में रहते हैं, जिनके संकल्प बड़े सीमित हैं, कंट्रोल वाले हैं, पवित्र संकल्प हैं, उनके चारों तरफ एक लाइट का आभा मंडल बनता है, विचारों से आभा मंडल बनता है। जिस प्रकार के विचारों में अधिक समय हम रहते हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है, और जब इस बॉडी कॉन्शियस में आके कोई कर्म किया, देह मन देह को लेकर के कर्म किया और कर्म पूरा हुआ, तो ये अनुभव करते हैं कि हम एक लाइट के शरीर में हैं। सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित कर दी, बाबा आपने करा दिया, शुक्रिया आपका, हल्के हो गए। जहां पर भी कोई ऐसी बात आती है सब बाबा को अर्पित किया, लाइट हो गए, तो फरिश्ता स्थिति अपने आप बन जाती है। हल्कापन, हल्कापन अनुभव होता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे शरीर में नहीं है, एक लाइट के शरीर में है, चलते फिरते बिल्कुल हल्के हैं, कोई बोझ नहीं, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, वो फरिश्ता स्थिति है। और जब हम विशेष बैठ करके योग करते हैं तो ये देह से न्यारी, मैं एक आत्मा हूं, एक निराकार स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में, देह और देही अलग अनुभव हो, और अलग अनुभव करते करते एकदम बाबा के समीप, जैसे ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे हूं, और वो बीज की स्थिति है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है लेकिन उसका विस्तार नहीं है, वो संकल्प भी बड़े अच्छे सीमित हैं, और एकदम अनुभव के संकल्प में आत्मा बैठी है, अपने स्वरूप को देख रही है, बाबा को देख रही है, उनकी शक्तियों का अनुभव कर रही है, वो हो रहा है, संकल्प शून्य नहीं है वहां भी, लेकिन वो संकल्पों का विस्तार नहीं है। जैसे बीज में सारा इसेंस भरा होता है, ऐसे ही वो निराकारी बीज रूप स्टेज बन जाती है, जिसमें बाबा कहता है विकर्म विनाश होते हैं, जो शक्तिशाली ज्वालामुखी याद है, जिसके वाइब्रेशन फैलते हैं, जिसकी सकाश दूर दूर तक जाती है, वो बहुत शक्तिशाली पावरफुल याद है, वो निराकारी याद है, उसका हम अभ्यास करते हैं बैठ करके। इसीलिए बाबा कहता अभ्यास करो, चलते फिरते कर्म करते कभी बाबा की अच्छी अच्छी बातों का सम्मान का अनुभव करो, रू रिहान करो, वो चलते फिरते कर सकते हैं। ऐसे योग को वैरायटी करेंगे तो थकावट नहीं होगी, वैरायटी करेंगे तो कहीं भी मूंझेंगे नहीं, ऐसे लगेगा। निरंतर करने के लिए वैरायटी जरूरी है, एक दो घंटा करना है तो भले बैठ करके करो, लेकिन हमें निरंतर योगी बनना है तो ऐसे करना चाहिए।
ओम शांति भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, हम लोग बाहर की दुनिया में रहते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, 20 साल पहले जो हम अमृत वेला योगाभ्यास करते थे, जो वातावरण बनती थी, आज वो है नहीं, आज भी करते हैं तो विभिन्न सोमानों का अभ्यास अब थोड़ा सा कठिन लग रहा है, कभी ये सोमान का अभ्यास करें, कभी इसका करें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई ऐसा सोमान बताइए जिसमें हमारी सारी सारा काम हो जाए, प्रकृति का भी सकाश मिल जाए, हमारे बिंद भी नष्ट हो जाए, हमारे विकार भी जो बचे हैं वो समाप्त हो जाए, जो छोटे मोटे कोई कुछ ऐसे संस्कार है जो लगता है जो हम लोग विजय पा लिए हैं, लेकिन परिस्थितियां जब आती है तो वो विकारी मर्ज हो जाता है, तो कुछ ना कुछ दबी हुई कुछ विकार है, तो ऐसा एक सोमान बताइए जिसमें हम उस पर फुल अटेंशन दें और उस पर ज्यादा हम ध्यान दें, तो अंत समय थोड़ा सा समय जो बच्चा है उसमें संपूर्णता को हम प्राप्त करें।
बहुत अच्छा। वैसे एक समान तो ठीक है, लेकिन एक ही समान में सदा काल के लिए स्थित होना थोड़ा मेहनत है। आप अपने अमृत वेले को अच्छा बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, शाम को रात को जब सोने जाते हो तो एक लक्ष्य रखो, मुझे बाबा का एक कोई छोटी सी मुरली अव्यक्त बाबा की पढ़ करके सोना चाहिए, अच्छा चिंतन करने के लिए, अच्छी स्टडी करके फिर सो जाऊं। और अमृत वेले मैं अवतरित हुई आत्मा इस मस्तक के बीच में बैठी हुई एक मस्तक मणि हूं, इस सुमान का अभ्यास करके देखो। कभी मस्तक के बीच में मैं इस मस्तक पर चमक रही हूं, कभी बाबा के मस्तिष्क पर चमक रही हूं। तो वो सुमान जो है, मस्तक मणि हूं, नूरे रतन हूं, बाबा के नूर में जैसे मैं बैठी हुई एक चैतन्य शक्ति हूं, ये सुमान बहुत अच्छे हैं। और इन भिन्न भिन्न रीति से इसको हम जब स्मृति में लाते हैं, तो जैसे बहुत प्यार होता है ना, तो कहते हैं तो मेरे नैनों में बैठा है, तो मेरे मस्तक पर बैठा है, ये मेरे दिल में बैठा है। तो ऐसे बाबा के साथ भी कभी मस्तक मणि बैठ बनो, कभी नैनों का नूर बनो, कभी दिल तक तो नसीन बनो, इस समान से योग करोगे तो निरंतर और सहज हो जाए। प्रश्न उत्तर का क्लास नहीं है, ध्यान रखना पूछना।
ओम शांति भाई साहब।
हाँ जी,
मेरा प्रश्न है, मैं योग उमंग उत्साह से करता हूं और नीचे से भी करता हूं, पर हम लोग लौकिक परिवार में रहते हैं, तो लौकिक में ऐसी कोई कोई घटना हो जाती है कि हम हलचल में आ जाते हैं और जो हमारा मूड रहता है वो नीचे हो जाता है। तो हम प्रयत्न करते हैं, पर ऐसा बार बार होने से हम जो हमारी ऊंचाई है ना जा रहे उसमें ढीलापन आ जाता है। ऐसे व्यक्ति से हम किनारा करते हैं, बाबा बोलते हैं किनारा करो, पर लौकिक में रहते हैं तो संबंध में आता है, फैमिली में रहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ में कभी ढीलापन ना हो और अमृत वेले में भी अलबेलापन ना हो।
बात इनकी प्रैक्टिकल की है, और ये बातें जब पारिवारिक जीवन में बातें जब सामने आती हैं, कोई ऐसी बातें आती हैं तो नीचे ऊपर स्थिति होती है। लेकिन बाबा एक शब्द देते हैं, संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। जब सवेरे सवेरे उठते हो ना, दृढ़ संकल्प करो। ये परीक्षाएं आएंगी, ये बातें परिवार में आती हैं, समाज में आती हैं, मुझे अपनी स्थिति को किसी भी हालत में डगमग नहीं होने देना, संकल्प करो। दृढ़ता का संकल्प करो, एक दिन करो, एक दो दूसरे दिन करो, तो दृढ़ संकल्प से एक दृढ़ता है, दूसरा फुल अटेंशन है। जहां दृढ़ता और अटेंशन रहता है वहां पर बातें आती हैं और पार हो जाती है। लेकिन जब दृढ़ता में कमी आती है, करना पड़ेगा, परिवार है, ये होता है वो होता है, तो थोड़ा सा नीचे ऊपर होते हैं। तो अपने संकल्पों में बहुत दृढ़ता ले आओ, जैसे कहते हैं दृढ़ता ही तपस्या है। और जहां संकल्प में दृढ़ता है उसे लौकिक में जीवन में जिद कहते हैं, बड़ा जिद्दी है ये, तो कोई की सुनता ही नहीं है। बाबा कहता जिद तो विकार है, लेकिन दृढ़ता एक शक्ति है। तो आप दृढ़ संकल्प करो और अटेंशन का पहरा दो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ओम शांति।